चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, नवदीप धाम की जय, मथुरा धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा, ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शन्वतां सुकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः, तदीयन्तस्त हि अभद्राणि विध्नोति सुरेचताम्, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 9, अध्याय संख्या 10, श्लोक संख्या 52। तरेपनवा श्लोक पढ़ता हूं, मेरे पीछे दोहराइए। ना आधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय लमह मृत्यु च अनिच्छितां न आसीत् रामे राजनी अधोक्षजे। नाधि व्याधि जराग्लानि दुख शोक भय क्लमान मृत्यु चय अनिच्छताम नासीत रामे राजनी अधोक्षजे। नाधि व्याधि जराग्लानि दुख शोक भय क्लमः मृत्यु चय अनिच्छताम नासीत रामे राजनी अधोक्षजे। न आधि व्याधि जराग्लानि दुख शोक भय क्लमः मृत्यु चे अनिच्छताम नासीत रामे राजनि अधोक्षजे। नहीं आधि आध्यात्मिक आधि भौतिक तथा अधिदैविक कष्ट अर्थात शरीर तथा मन के अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए तथा प्रकृति द्वारा प्रदत्त कष्ट व्याधि रोग जरा बुढ़ापा ग्लानी विक्षोभ दुख कष्ट शोक पश्चाताप भय डर क्लमा थकावट मृत्यु मरण च भी अनिच्छताम न चाहने वालों का न आसीत नहीं था। रामे भगवान रामचंद्र के शासन में राजनी राजा होने के कारण अधोक्षजे भगवान जो इस जगत से परे हैं। अनुवाद पढ़ता हूँ और तात्पर्य पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की, जब भगवान रामचंद्र दोहराइए इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक मानसिक कष्ट रोग बुढ़ापा विचोह पश्चाताप दुख डर तथा थकावट का नामो निशान न था, यहाँ तक कि न चाहने वालों के लिए भी मृत्यु नहीं थी। तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। इतनी सारी सुविधाएं इसलिए विद्यमान थी क्योंकि भगवान रामचंद्र संपूर्ण जगत के राजा थे। ऐसी ही परिस्थिति इस युग में भी तुरंत लागू की जा सकती है, भले ही यह युग समस्त युगों में निकृष्ट क्यों ना हो। कहा गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण जी इस कलयुग में केवल अपने पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे के रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम अपराध रहित होकर कीर्तन करें तो इस युग में राम तथा कृष्ण अब भी उपस्थित हैं। राम राज अत्यधिक लोकप्रिय एवं लाभदायक था और इस कलयुग में भी इस हरे कृष्ण आंदोलन के प्रसार से वैसी ही परिस्थिति तुरंत लाई जा सकती है। 52वें श्लोक का अनुवाद पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइए। हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, भगवान रामचंद्र के राज में सारे वन नदियाँ पर्वत राज्य सातों द्वीप और सातों समुद्र सारे जीवों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए अनुकूल थे। ओम अज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुवादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशात देश तारिणे। हरे कृष्णा। हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, भगवान रामचंद्र के राज में सारे वन नदियां पर्वत राज्य सातों द्वीप तथा सातों समुद्र सारे जीवों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए अनुकूल थे। जब भगवान रामचंद्र जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विक्षोभ, पश्चाताप, दुख तथा थकावट का नामो निशान न था। यहाँ तक कि न चाहने वालों के लिए भी मृत्यु भी नहीं थी। देखिए भगवान की लीलाएं चल रही हैं। चर्चा आ रही है कि किसी को कोई कष्ट नहीं था, ये आ रही ना। सुग्रीव की पत्नी को वाली ने अपने घर में रख लिया। सुग्रीव को कष्ट था कि नहीं था? था ना। यहाँ जो है तीन प्रकार के कष्टों की चर्चा हो रही है, जिसमें आ रहा है आधी और व्याधि। जो संस्कृत डिक्शनरी है उसके अनुसार आधी का मतलब होता है मानसिक कष्ट और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट। तो प्रभुपाद जी इसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर देते हैं बड़े सुंदर तरीके से। रोग कैसा है? आध्यात्मिक, शारीरिक और दैविक। इन तीनों के अंदर कनेक्शन क्या है? कोई कॉमन चीज है इन तीनों के अंदर? समथिंग कॉमन? यस। तो किसमें होती है? तीनों में मानसिक पीड़ा होती है। मानसिक पीड़ा का मतलब है ऐसा कष्ट जो आपके मन के द्वारा प्रकट है। मतलब आपका मन परेशान है तो आप मानसिक पीड़ा से व्यथित हैं। अगर आपका मकान ढह जाए भूचाल के अंदर, बाढ़ के अंदर जो है घर बह जाए, तो आपको मानसिक कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो दैविक कष्ट तो है, देवताओं द्वारा दिया गया, परंतु साथ ही मानसिक भी। मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, किसी और प्राणी ने आपको हर्ट कर दिया, बैल ने सींग मार दिया, आपको चोट लग गई, आप छत से गिर गए, आपको सीढ़ी से गिर गए, आपको चोट लग गई। सीढ़ी से गिरना, छत से गिरना एक अलग प्रॉब्लम हो गई है, किसी प्राणी द्वारा कष्ट देना एक अलग प्राणी हो गई। किसी ने आपको मारा और आपको उठा के पटक दिया, किसी ने मारा है तो दूसरे प्राणी के द्वारा कष्ट हुआ जा रहा है। आप खुद भी तो गिर के चोट खा सकते हो, नहीं खा सकते क्या? तो कैसा कष्ट हुआ वो? अपने आप कष्ट हुआ है, मानसिक नहीं है। मानसिक कष्ट तो नहीं है, मन से तो नहीं गिरे ना, कि मन से गिर गए, चोट तो लगी है। दूसरे प्राणी के द्वारा नहीं है परंतु दूसरी वस्तुओं के द्वारा है। अपने आप से भी चोट खा जाता है आदमी कई बार, तो उसको कहीं ना कहीं कष्ट होता है और उसकी वजह से मन में कष्ट होता है कि आज मैं बीमार हूँ, आज मैं चल फिर नहीं सकता, बाथरूम नहीं जा सकता, टॉयलेट नहीं जा सकता, खाना नहीं खा सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। मन से कष्ट जो है हर प्रकार के कष्ट के साथ मिला हुआ है। अगर आपको कोई भी कष्ट हो और उस कष्ट को आप स्वीकार कर लें और मन से परेशान ना हो तो कैसा रहेगा? कष्ट तो है परंतु आपने उसको स्वीकार कर लिया है। पर क्या सुग्रीव ने स्वीकार किया? किया क्या? कष्ट तो था। अब भगवान रामचंद्र जो है लीलाएं कर रहे हैं। सुग्रीव की पत्नी तारा को वाली के घर से बचाना है, उसके कब्जे से बचाना है और सुग्रीव को वापस सौंपना है। कैसे होगा सुग्रीव के साथ संबंध कैसे बनेगा? राजा रामचंद्र तो अपने कौशल नरेश हैं, बनने वाले हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं, उनको क्या आवश्यकता है कि अपने घर में बैठे हुए जाके सुग्रीव की चिंता करें। अच्छा मैं आ रहा हूं इसलिए कि तुम्हारी पत्नी को वाली के कब्जे से निकाल के तुम्हें सौंपने के लिए। वाली कहेगा जी मेरे घर का मामला है, आप क्यों दखल दे रहे हो? नरेश है ना, आप अपने घर बैठो, मैं अपने घर बैठा हूं, मुझे काहे कष्ट दे रहे हो? रावण ने अत्याचार किए हुए हैं, वो अपने राज्य में फिट है, कहां है उसका राज्य, कैसे प्राप्त करें, कैसे छल किया? रावण ने छल से कैसे लंका प्राप्त करी? किसको धोखा दिया उसने? जोर से बोलो, क्या वाल्मीकि रामायण पढ़ी? कुबेर से छल किया था क्या? कुबेर से छल किया था? शिवजी तो उनके सहायक थे। कैसे सहायक थे शिवजी? जब भगवान राम समुद्र पार करके लंका में रावण का वध करने जा रहे हैं तो राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी है रामेश्वरम में। क्यों करी है? ये छोटे छोटे प्रश्न, क्यों करी है? जब हम साधारण बात करते हैं तो लोग कहते हैं देखो जी शिव जी जो है राम जी से बड़े हैं, राम जी उनकी पूजा कर रहे हैं, ये कहते हैं नहीं कहते हैं? साधारण व्यक्ति समाज में जो बैठा हुआ कहते कि नहीं कहते? भगवान कहते हो आप इन्हें और वाली को छुप के मार रहे हैं, ये कैसे भगवान है भाई? सामने से नहीं मार सके उसको, क्यों मार रहे छुप के? भगवान है ना सर्वशक्तिमान, तो वाली को छुप के क्यों मार रहे हैं बताइए? जो तुम्हारे सामने आएगा उसकी आदि शक्ति तुम में आ जाएगी। सही बात है। चलिए एक एक करके प्रश्न को जानने का, प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। राक्षसों में और देवताओं में युद्ध हुआ है। लंका नगरी बनाई गई है राक्षसों के लिए। राक्षस जो है वो देवलोक पे अधिकार करना चाहते हैं तो विष्णु जो है उनकी हेल्प के लिए आते हैं। युद्ध होता है तो राक्षस जो है उनको पाताल लोक में जाना पड़ता है, लंका नगरी उनके हाथ से छिन जाती है। इस दौरान में पुलत्स ऋषि के पुत्र पौलत्स और वैश्यवन और उनके पुत्र हैं विश्वा। विश्वा मुनि के पुत्र हैं कुबेर। कुबेर घोर तपस्या करते हैं और तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो कहते हैं वरदान मांगो। तो कुबेर कहते हैं कि मुझे वरदान के अंदर एक चीज चाहिए कि मैं रक्षा करना चाहता हूं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुमको लोकपाल बना सकता हूँ, मेरे पास 3 लोकपाल ऑलरेडी हैं, इंद्र, यम और वरुण, चौथे तुम हो जाओगे, चारों दिशाओं का मेरे पास कंट्रोल हो जाएगा, तो तुम लोकपाल की स्थिति ग्रहण करो। तो कुबेर जो है चौथे लोकपाल बन जाते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपने मुझे लोकपाल तो बना दिया, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहाँ है, मैं कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन करूंगा, कंट्रोल कहाँ से करूंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि त्रिकुट पर्वत के ऊपर लंका नाम की एक स्वर्ण नगरी है, तुम उसमें चले जाओ, वहां पर राज्य करो और वहां से जो है तुम कंट्रोल करो। कुबेर जी चले गए। अब जो राक्षस जाति के लोग हैं जो कि पाताल लोक में रह रहे हैं, उसके बाद 3 भाई हैं, वो माल्यवान, माली और सुमाली, माल्यवान, माली और सुमाली, ये तीनों भाई जो हैं सुकेश के पुत्र हैं। सुकेश विद्युत केश का पुत्र है, विद्युत केश जो है वो हेती और भया का पुत्र है। अब सुकेश को पाला है शिवजी और पार्वती ने, कि विद्युत केश जिसका विवाह हुआ है एक वैश्या के साथ, एक संध्या नारी बोलते हैं उसको, सालकंकटा, वो संतान उत्पन्न करने के समय विंध्याचल पर्वत पे गई, संतान पैदा करी और छोड़ के फिर चली गई। तो उस स्थान पे जो है बालक रो रहा है, शिवजी और पार्वती अपने विषम वाहन पे जा रहे हैं नंदी पे, और वहाँ क्या देखते हैं, बालक रो रहा है। तो पार्वती जी कहती हैं मुझे बालक के पास ले चलो, बालक के पास पहुँचती हैं, गोदी में लेती हैं और लेके अपने राज्य में आ जाती हैं कि मैं इसको पालूंगी। तो उस सुकेश के साथ शिवजी का नैसर्गिक नेचुरल प्रेम है, क्योंकि तो उनका पालित पुत्र है। अब सुकेश के पुत्र हुए माल्यवान, माली और सुमाली, जब माल्यवान और माली की मृत्यु हो जाती है और सुमाली पाताल लोक में है, अब समस्या आती है कि कैसे मैं दोबारा से अपना वो वैभव प्राप्त करूं जो राक्षसों के पास पहले से था, वो वैभव प्राप्त करना चाहते, धोखा नहीं दिया उसने किसी ने, छल नहीं किया। हाँ, दूसरे शब्दों में कहेंगे तो एक छलनुमा काम किया है उसने, क्या किया है, स्कीम बनाई है। वो कहता है कि कुबेर जो है विश्वा का पुत्र है, लंका में राज्य कर रहा है, अपनी पुत्री कैक्सी से कहता है अगर तुम किसी तरीके से विश्वा से पुत्र की प्राप्ति कर लो तो पुत्र बड़ा होके अपनी जायदाद में हक मांगेगा। आई एम ए पार्टी टू दिस लंका, मैं भी तो आपका पुत्र हूं तो लंका का राज्य मेरे को भी मिलना चाहिए। ये स्कीम बना के जो है कैक्सी आती है। विश्वा मुनि संध्या का समय है, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनके पास जाके बड़े सुंदर आभूषण पहन के, सुंदरता में खूब श्रृंगार करने के बाद उनके आश्रम में आके उनके सामने खड़ी होके अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदती है और उनको आकर्षित करती है। विश्वा मुनि का ध्यान अपनी पूजा पाठ के बाद जब टूटता है तो उसकी तरफ देखते हैं, उससे कहते हैं कि बताइए कैसे आई हो, मैं आपका क्या प्रयोजन सिद्ध करूं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। तो कहती है मैं आपसे पुत्र की प्राप्ति चाहती हूं, आई वॉन्ट ए सन फ्रॉम यू। तो विश्वा मुनि कहते हैं कि तुमने गलत समय चुना है, ये समय संतान प्राप्ति का नहीं है, इट्स नॉट द टाइम, संध्या का समय जो है संतान की प्राप्ति का नहीं है, तुमने गलत समय चुना है। पर चूंकि तुम ऐसे गलत समय पे आई हो तो मैं तुम्हें जो है 3 संतान दूंगा और तीनों जो है राक्षस जाति की उद्यमी संतान होंगे, उद्यम करेंगे, रावण, कुंभकर्ण और शूर्प। अब जो है कैक्सी रिक्वेस्ट करती है, मनाती है, प्रार्थना करती है, स्तुति करती है, तो विश्वा मुनि जो है प्रसन्न होकर कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुझे 1 संतान दूंगा जो कि भक्त होगी विभीषण, उस रावण ने जो है बड़े होकर लंका नगरी के ऊपर एक तरीके से कब्जा किया है। कुबेर ने कहा है भाई अगर तुम चाहते हो यहाँ राज्य करना तो तुम करो, मैं चला जाता हूँ। एंड ही लीव्स एंड गोस। राजा रामचंद्र को लंका में रावण को मारने के लिए जाने की क्या आवश्यकता थी? आप तो कौशल नरेश बनने वाले हो। राजा दशरथ जो है अपने समय के बहुत ही पूजनीय सम्माननीय माननीय राजा थे, उनके पुत्र हो बड़े और तुमको राज्य मिलने वाला है। राजा दशरथ ने अनाउंस कर दिया है कि तुम राज्य के स्वामी होगे, तब ये बताओ कि तुमको राजा रामचंद्र को वहां रावण के घर जाके उसको मारने की क्या आवश्यकता थी? बात ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य रानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए भगवान जो है बार बार प्रकट होते हैं। परंतु यहाँ समस्या ये है कि भाई आप अपने घर में हो, वो अपने घर में है, उसके घर में जाने की आवश्यकता क्या है? व्हाट इज द नीड? एक और लीला चल रही है। धरती जो है वो जा रही है भगवान विष्णु के पास। बहुत बोझ हो गया है, बहुत कष्ट हो गया है, कोई यज्ञ ठीक से नहीं हो पा रहा है। विंध्याचल पर्वत के परली तरफ तो गांव के गांव उजाड़े जा चुके हैं और गांव के अंदर अस्थियों का ढेर लगे हुए हैं, लोग मारे जा रहे हैं। क्या साधारण व्यक्ति, क्या ऋषि, क्या मुनि, सबका हत्या हो रही है। तो भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, पर रावण के पास एक वरदान है ब्रह्मा जी का। क्या वरदान है? कि वो किसी देवता से नहीं मारा जाएगा, किन्नर से नहीं मारा जाएगा, गंधर्व से नहीं मारा जाएगा, राक्षस से नहीं मारा जाएगा, यक्ष से नहीं मारा जाएगा। उसने अपने आप को चारों तरफ से सुरक्षित कर लिया है, परंतु मनुष्यों को, वानरों को और रीछों को छोड़ दिया। उनसे उसने कहा ये तो निकृष्ट है भाई, की क्या ये क्या मेरा कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, मैं बहुत पावरफुल हूं। तो उस रावण को मारने के लिए मुझे नर रूप में अवतार लेना पड़ेगा, मनुष्य के रूप में आना पड़ेगा। तो क्या चुना उन्होंने? दशरथ और कौशल्या कि मुझे वहां प्रकट होना, परंतु मैं चार रूपों में प्रकट होऊंगा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। मेरे को अपने आप को चार रूपों में प्रकट करना होगा। उनके साथ भगवान के परिकर जो हैं उनके लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया देवताओं को कि आप जो है वानरियों के साथ, ऋषियों के साथ जो है संतानें उत्पन्न करें, कि वही उनके सहयोगी होंगे, वही उनका साथ देंगे। तो सवाल ये है कि रावण तक पहुंचे क्यों, क्यों कैसे पहुंचे तो एक बात की बात है, पहुंचे क्यों, किस लिए? तो देवताओं ने पूरी लीला रची है। ड्रामा होता है ना तो पीछे डायरेक्टर होता है, फिल्म बनती है तो पीछे स्टोरी राइटर है, डायरेक्टर है, डायलॉग राइटर है, वगैरह 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 बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी तरह जो है ये जो कार्य हुआ है, दुष्टों का विनाश कैसे होगा, साधुओं का परित्राण कैसे होगा, वो तो अपने राज्य में है, दुष्ट देरा कलंका के और विंध्याचल पर्वत के नीचे कष्ट, दुष्टता कहाँ हो रही है? विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में और राजा रामचंद्र है विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में, तो वही क्या जरूरत है विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण में जाने की, अब अपने घर में रहिए, वो अपने घर में रहे, मस्ती हो रही, क्या प्रॉब्लम है। पर दुष्टों का विनाश और साधुओं का परित्राण कैसे होगा, हाउ विल यू डू इट, कैसे, तो एक प्लानिंग करी जाती है। भगवान का प्राकट्य हुआ है, यज्ञ हुआ है, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है, उसकी बहुत लंबी चर्चा है वाल्मीकि रामायण में 8वें सर्ग से लेकर 18वें 19वें सर्ग तक चर्चा आती है। जो यज्ञ के अंदर से एक प्रजापति पुरुष प्रकट होता है, जिसके हाथ में एक खीर का बर्तन है, वो राजा दशरथ से कहता है कि ये खीर जो है वो अपनी रानी को खिला दीजिएगा और आपके संतान हो गए। अब राजा दशरथ के सामने समस्या है कि मैं खीर को बांटू कैसे, तो पता नहीं क्या उन्होंने सोचा, मुख्य रानी थी कौशल्या, आधी खीर उसको दे दी, आधी खाली हो गई, अब बची आधी, अब आधा बर्तन खीर है, रानियां हैं अभी दो और, क्योंकि तो मुख्य भाग आधा तो दिया जा चुका है, अब उस आधे को आगे बांटना है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है कि आधे खीर जो है मैं सुमित्रा को दे देता हूं, सुमित्रा आधी खीर सुमित्रा को दे दी, अब बची एक बटा चार। फिर विचार किया तो एक बटा चार में से फिर आधी खीर जो है सुमित्रा को दे दी और आधी कैकेयी को दे दी, चार संतान हुई, क्योंकि जो खीर कैकेयी के अंश में आनी चाहिए थी उसका आधा भाग सुमित्रा को चला गया था, जैसे कि शत्रुघ्न प्रकट हुए तो शत्रुघ्न का जो है एक नेचुरल प्रेम जो है वो भरत जी के साथ था और राम जी का लक्ष्मण जी के साथ। अब बालक बड़े हो गए हैं, यूथ में आ गए हैं, विश्वामित्र उनको ले गए हैं, यज्ञ में विघ्न डालिए, ताड़का उसका वध होता है, अब उनको जो है जनकपुर धाम विवाह के लिए ले जा रहे हैं। सीता जी का प्राकट्य हुआ है कहां पर, सीतामढ़ी, मढ़ी का मतलब होता है झोपड़ी, सीतामढ़ी बड़ा सुंदर स्थान है, कितने लोगों ने दर्शन किए हैं वहां, सीतामढ़ी कितने लोग गए, बिहार में है, उत्तरी बिहार में नेपाल के बॉर्डर के पास, बड़ी सुंदर जगह है। सीता जी का प्राकट्य हुआ है, अब वो सीता जी जो है अतीव सुंदरी है, अतीव सुंदरी, परंतु देवता लोग लीला करते हैं कि उस स्वयंवर के अंदर रावण भी आता है, सीता जी की झलक पाता है और चला जाता है, धनुष नहीं उठा पाए, तो मन में एक भाव आ गया कि सुंदर नारी को मुझे प्राप्त करना चाहिए, मौका नहीं है। अब देवता लोगों ने मौका अरेंज किया है कि अगर राजा रामचंद्र को राज्य मिल गया और वो राज्य करने लगे तो वो दुष्टों का विनाश कैसे करेंगे, दक्षिण में कैसे जाएंगे, क्या काम करें, कैसे पहुंचेंगे वहां, अपने राज्य में मस्त है वो, अपने राज्य में मस्त है, क्या जरूरत है भाई। तो उन्होंने जो है उसके पहले जो देवार्षुन संग्राम के अंदर राजा दशरथ को तो उन्हें दो वरदान दिए थे कैकेयी को, वो वरदान कैकेयी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी रामचंद्र से, सबसे ज्यादा, परंतु बुद्धि फेरने के लिए विघ्नेश्वरी देवी को बिठाया गया है मंथरा की जुबान पे और बोला गया है कि तूने जो है कैकेयी का मन भड़काना है, जैसे कि कैकेयी वरदान मांगे और राजा रामचंद्र को वनवास हो और ये दक्षिण की तरफ जाए, स्कीम है, ये लीला है भगवान की, सारे ओरिजिनेटर इस लीला के भगवान स्वयं है और कोई नहीं, चित्रकूट में 11.5 साल रहते हैं, 11.5 साल 11.5 years। लक्ष्मण जी साथ जाते हैं, कभी आपसे चर्चा करेंगे ओम शब्द की व्याख्या में, तब बताएंगे कि लक्ष्मण जी जो हैं उन्होंने निद्रा पे विजय पाई हुई है। लक्ष्मण पहाड़ी है वहां पर, जहां पर उन्होंने खड़े होकर 11 साल बिना निद्रा लिए पहरा दिया कि रामचंद्र जी और सीता जी को कोई कष्ट न दे पाए। इवेंचुअली 11.5 साल के बाद फिर वहां से जो है होता है पंचवटी की तरफ। हमने रामलीला में देखा है, रामायण नाटक में देखा है, लक्ष्मण रेखा खींची जाती है, अग्नि की रेखा खींची जाती है। व्हाट इज दैट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? कदम रामायण पढ़ेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंस बताते हैं कि बेसिकली लक्ष्मण रेखा क्या है। लक्ष्मण रेखा में सीता जी को अग्नि के संरक्षण में दिया जाता है और छाया सीता अरेंज करी जाती है ताकि रावण उसको उठा के ले जाए। असली सीता को रावण नहीं छू सकता, इज नॉट एंटाइटल्ड टू टच। अब वो छाया सीता जो है उसको जब रावण ले जाता है तो लीला दिखाई जाती है। राम जी रो रहे हैं, गली गली वन वन भटक रहे हैं, बोले क्या देखो ये भगवान है तो रो रहे हैं। भाई साधारण सामाजिक लोग क्या कहते हैं, ये कैसे भगवान है जो रोते रहते हैं, पत्नी को कोई उठा के ले गया तो ये रो रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा दिखाई है कि अगर पत्नी पे कष्ट आता है तो पति को भी कष्ट होना चाहिए। आज की तारीख में क्या है, अगर पत्नी जो है घर से चली जाती है तो पति शाम को दारू पीता खुश हो जाता, चलो पला छुटी जान छुटी, बड़े दिन से कष्ट दे रही थी, बहुत दिन से तकलीफ दे रही थी, जान छुटी। नहीं, मर्यादा दिखाई गई है। अब भगवान राम का मिलन होना है अपने परिकरों के साथ, जो कि मनुष्य वानर और रीच, जो कि यही जो है रावण का वध करने में सक्षम है और कोई नहीं है। अब सुग्रीव की लीला है, वो वाली जिसने 6 महीने रावण को कांख में दबाए रखा, कितना पावरफुल होगा सोचो आप, कितना पावरफुल होगा। उस वाली के पास ब्रह्मा जी का वरदान है। क्या वरदान है? कि जो उसके सामने आ जाएगा उसका आधा बल जो है वाली में चला जाएगा। ब्रह्मा जी कौन है? ब्राह्मण भगवान के भक्त हैं। हम लोग जब भोग लगाते हैं तो कौन से मंत्र का आखिरी कौन सा मंत्र है जिसका उच्चारण करते हैं? नमो ब्राह्मण गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान ब्राह्मणों का और गौ का हित करने वाले हैं। भगवान पूर्ण है, हमेशा पूर्ण रहते हैं। ओम पूर्णमदाय पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण रहते हैं। ईशोपनिषद का इन्वोकेशन मंत्र है और उनमें से कुछ सृष्टियां बाहर भी आ जाती हैं तब भी भगवान पूर्ण रहते हैं, कभी अपूर्ण नहीं होते। जब भगवान अपूर्ण होंगे नहीं तो उनका आधा बल कैसे चले जाएगा वाली में? अबिलिटी को कैसे चला जाएगा? नहीं जा सकता। इसका मतलब है जो ब्राह्मण हिताइचय की बात हो रही है, जो ब्रह्मा जी उनके भक्त हैं उनका वरदान छूटा हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों का हित करते हैं, ब्राह्मणों का हित करते हैं, गौ का हित करते हैं, तो ब्रह्मा जी का वरदान छूटा ना हो जाए, मेरा बल आधा हो नहीं सकता, तो मैं कोई ऐसा उपाय करूं जिससे जो है वाली भी मर जाए और वरदान भी छूटा ना हो। इसलिए भगवान ने छुप के बाण मारा। बल की समस्या नहीं थी कि आधा बल चला जाएगा, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। बातें हैं, लोगों ने उसको अपने हिसाब से ढाल लिया है। एक्चुअल स्टोरी क्या है कि मेरे भक्त जो है ब्रह्मा जी, जो ब्राह्मण है, उनका वरदान छूटा ना हो जाए, इसलिए मेरे को वाली को छुप के मारना पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं सामने आया, मेरा बल आधा होगा नहीं, तो ब्रह्मा जी का वरदान झूठा। ये भी एक लीला है। अब संगी साथियों को लेके भगवान जो है समुद्र किनारे पहुंचे, जा रहे हैं लंका, समुद्र को पार करना है, परंतु मन में एक हल्की सी फांस, शिव जी मेरे भक्त हैं, मेरे नाम का उच्चारण करते रहते हैं, माला जपते रहते हैं, मेरा स्मरण करते रहते हैं, उनका पालित पुत्र का बेटी का बेटा है रावण, शिवजी ने पाला है सुकेश को, सुकेश का जो है पुत्र है सुमाली, सुमाली की बिटिया कैक्सी और कैक्सी का पुत्र है रावण, मतलब एक पूरा जो है हायरार्की है, एक पारिवारिक संबंध है और शिवजी का उनसे स्नेह है। क्या शिवजी नहीं समाप्त कर सकते थे अपने त्रिशूल से रावण को? उनको देवताओं का कष्ट नहीं दिखाई दे रहा, समाज का कष्ट नहीं दिखाई दे रहा, परंतु थोड़ा सा एक नेचुरल मर्यादा दिखाई, नहीं मैं नहीं मारूंगा भगवान को कार्य करने को। अब भगवान कहते हैं कि मैं अपने एक भक्त के पारंपरिक संतान को समाप्त करने जा रहा हूँ, मारने जा रहा हूँ, तो आई मस्ट इन्फॉर्म एंड टेक परमिशन। इसको उदाहरण से समझें, एक कंपनी के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक मैनेजर रखा और मैनेजर ने आगे 10 लोग रख दिए अपने नीचे काम करने वाले, जिम्मेदारी मैनेजर की है सारी, भाई तुम दिन देखो सब काम है। तो एक आदमी बदमाश निकल गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक बात पहुंची तो सबसे पहले मैनेजर को बुलाएगा, देख भाई तेरे आदमी को निकालने वाला हूं मैं, तो बदमाशी कर रहा है, गुस्सा मत करियो। नहीं तो कहेगा जी आप तो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं चले, मेरे को तो आपने धोखे में रखा और बंदा निकाल दिया, फायर कर दिया उसको, मैंने हायर किया आपने फायर कर दिया, मैं बीच में कहां हूं? तो भगवान जो है अपने भक्त को भी पूरा सम्मान देते हैं, मर्यादा दिखाते हैं। सम्मान क्या देते हैं कि रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, देख भाई अब मैं जा रहा हूं तेरे रावण का वध करने, ये नहीं बाद में कहना कि मुझे बताया नहीं, मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया, आपने अपनी लिमिट को ट्रेसपास कर दिया है, ऊपर ही ऊपर से चले गए और मेरे को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं। आज भी रामेश्वरम जो है चारों धामों में से एक है, शिवलिंग की वहां पर स्थापना हुई है और रामेश्वरम में कितने लोगों ने दर्शन किए हैं, 22 कुएं हैं वहां पर, 22 के 22 कुओं के अंदर तल दिखाई देता है, यहां कुएं में पानी होगा ना उसका तला नहीं दिखाई देता, तले में मिट्टी होगी, वहां जो 22 के 22 कुएं हैं नीचे पथरीला है और पानी आ रहा है, लोग नहा रहे हैं जा रहे हैं, हजारों टन पानी रोज निकल रहा है, हजारों गैलन पानी निकल रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है, बट इट इज कमिंग। रामेश्वरम के आगे समुद्र में जाएंगे, वहां भी एक जगह है जहां कुआं है जिससे कि मीठा पानी आता है, समुद्र का सारा पानी खारा होता है। भगवान राम ने अपने समय पे असंख्य लीलाएं करी है परंतु सब मर्यादा में करी है। ऐसा है कि आपकी पत्नी जो है वो तो रावण के अधिकार में रही है और आपको अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा लोगों की धारणा है, लोग कहते हैं, परंतु क्या वाकई ऐसा है? फिर कदम रामायण में उल्लेख आता है कि भगवान ने कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली है, अग्नि देव का आवाहन किया है कि भैया छाया सीता ले लो और असली सीता, छाया सीता जिसको वहां से ले आए हैं उसको ले लो और असली सीता हमें ले लो, फिर मर्यादा दिखाइए, फिर मर्यादा दिखाइए। जब अयोध्या में राज्य कर रहे हैं तो किसी धोबी के द्वारा बात सुन ली गई और पत्नी का त्याग कर दिया, कैसा अनर्थ है जी, कैसे भगवान ने पत्नी छोड़ दी? नहीं, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से जो मर्यादा थी वो यही थी, परंतु उसके बाद भी एक मर्यादा रखी। आज की डेट में फटाक से दूसरी शादी कर लेते हैं, तीसरी शादी कर लेते हैं, टक टक टक। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अभी पहले से छुटकारा हुआ नहीं, कोर्ट में केस चल रहा है, दूसरी शादी हो गई, कर दी बैठ कर, ये तो फैसला हो ही जाएगा। भगवान राम ने, राजा थे, शादी कर सकते थे, विवाह कर सकते थे, नहीं किया। स्वर्ण सीता बनाते थे, यज्ञ में अपने साथ बिठाते थे, हर बार स्वर्ण सीता बनती थी यज्ञ में, जब यज्ञ करते थे और उनको बिठा देते थे। जब हम द्वापर के अंदर गोपियों की कथाएं पढ़ते हैं तो गर्ग संहिता के अंदर उल्लेख आता है गोपियों का प्राकट्य कैसे हुआ, तो उसमें एक उल्लेख ये भी है कि जितनी स्वर्ण सीताएं थी वहां पर सब एकत्रित हो गए, राजा रामचंद्र के पास आए और बोले कि आपने हमें पत्नी का दर्जा दिया है, आप जब भी यज्ञ करते हो हमको क्रिएट करते हो और हमको बिठाते हो यज्ञ में अपने साथ, और फिर उसको हमको जो है एक अलग महल में रख देते हो, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ वही प्रेम प्राप्त करें जो सीता जी को उपलब्ध था। तो राजा रामचंद्र ने कहा हमसे कि मैं इस त्रेता युग के अंदर एक पत्नी व्रतधारी हूं, उसके सिवाय मैं दूसरे के साथ संग नहीं कर सकता, अगर आपको मेरा प्रेम प्राप्त करना है तो आपको द्वापर के अंदर गोपी गर्भ से जन्म लेके गोपी बन के आना हो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं जिन्होंने गोपी बनने के, जिनको भगवान ने गोपी बन के आने का आशीर्वाद दिया, वचन दिया है। पुलिंद कन्याएं, भील कन्याएं, कौशल देश की स्त्रियां, जनकपुर धाम की स्त्रियां, वृक्षों के धन्वंतरी जो लेके आए हैं लताएं और पेड़ जो है जिनको कि उन्होंने भी जो है मांगा है रिक्वेस्ट कि हमको भी जो है आपका सानिध्य चाहिए, वेदों की ऋचाएं उनको सानिध्य चाहिए, मत्स्य भगवान के साथ जो मछलियां हैं उनको सानिध्य चाहिए। अगर संहिता पढ़ेंगे तो सारा उल्लेख आएगा, सारी जो है गोपियाँ बन के प्रकट हुई हैं। पर भगवान राम ने पूर्ण समय के अंदर मर्यादा दिखाई, एक आदर्श प्रस्तुत किया है, इसीलिए लोग आज भी राम राज्य की कामना करते हैं कि वो आदर्श प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए। राम जी का प्रेम अपने भाइयों के प्रति और भाइयों का प्रेम अपने प्रभाता के प्रति। अयोध्या में जाएंगे ना आप तो वहां से 25 किलोमीटर दूर नंदीग्राम है, किसी ने दर्शन किए नंदीग्राम में? हैज समबडी बीन देयर? भरत जी वहां पर जो है तपस्या करते हैं, चरण पादुका रखे हुए हैं, मुझे राज्य नहीं करना है भाई, राज्य राजा रामचंद्र का है। तपस्या करते करते देखते हैं कि एक वानर ऊपर से जा रहा है पहाड़ लेके, भाई तुम कौन हो? उसको नीचे उतारते हैं, तीर लगा के। वानर जो है राम राम कहता हुआ नीचे उतरता है तो पूछते तुम कौन हो? मैं राम दूत हनुमान हूँ, लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हुए हैं, संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूँ, बूटी की पहचान नहीं थी तो पहाड़ लिए जा रहा हूँ, आप पे हमला करने नहीं आ रहा, आप कौन है? बोले मैं राजा रामचंद्र का भाई हूँ भरत। दोनों में मिलन होता है और वहाँ की जो डीटी है, जो डीटी है वहाँ की, उसमें भरत जी और हनुमान जी गले मिल रहे हैं। ऐसी डीटी जो है वो दोनों के मिलन की है, सिंगल सिंगल अलग अलग नहीं खड़े हैं कि हनुमान जी यहाँ खड़े हैं, भरत जी यहाँ खड़े हैं, दोनों के गले मिलते हुए की ड्यूटी। भगवान और उनके परिकर जितने साथ आए सबकी लीलाएं अगर आप उनको एनालाइज करेंगे समझेंगे तो आपको एक अतीव आनंद की प्राप्ति होगी। समय पाकर उसमें लोगों ने अपने हिसाब से चेंजेस कर दिए, अपने हिसाब से बदलाव कर दिए और अपने मन से निष्कर्ष निकाले। तो कभी ध्यान से वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा तो आपको उनको लीलाओं का वर्णन मिलेगा जिसमें एक आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा, श्रील गोपाल की जय।